good morning. 1 minute. Sit back comfortable. เป็นฟูตัวบัดไม่คิดเจ็บने आपको फील करें, ये शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं मैं, ये आंखें देखती हैं, लेकिन क्या देखना है ये डिसाइड करने वाली शक्ति हूं मैं, मुख बोलता है लेकिन क्या बोलना है वो चूज करने वाली शक्ति हूं मैं, हर सोच हर डिसीजन हर कर्म करने वाली शक्ति हूं मैं, ये शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैं सारा दिन में इतने सारे और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर कर्म करती हूं, उसी तरह ये शरीर भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है, यूज करने वाली शक्ति हूं मैं, आज दिन तक इस इंस्ट्रूमेंट को ही मैं समझ लिया, लेकिन अब फील करे इसको कि मैं शरीर नहीं, इसको चलाने वाली शक्ति हूं, प्योर ब्यूटीफुल powerful, I am a pure being, meri ek ek purity ki thought मेरे शरीर के हर सेल पर असर करती है, मेरी वाइब्रेशन मेरे शरीर का निर्माण करती है, मेरी वाइब्रेशन मेरे रिश्तों को बनाती है, मेरी वाइब्रेशन प्रकृति पर प्रभाव डालती है, आई एम दिस प्योर एनर्जी फील्ड, देखें अपने आप को, हम जहां जहां कदम रखते हैं ये एनर्जी फील्ड हमारे साथ चलती है, अपने आप को विजुअलाइज करें कि आपके चारों तरफ एक सर्कल ऑफ लाइट है, व्हाइट लाइट चारों तरफ है हमारे, जितनी जितनी मेरी थॉट्स प्योर होती जा रही हैं, ये एनर्जी ये व्हाइट लाइट और पावरफुल चारों तरफ फैलती जा रही है, जिस जिस को हम मिलेंगे ये वाइब्रेशन उनको छूते ही उनको भी अपनी प्योरिटी की याद दिला देगी। देखें अपने आप को अपने क्लिनिक में, आपके सामने एक एक जो आ रहा है, आपकी प्योरिटी की वाइब्रेशन एक लेजर बीम की तरह आपसे निकल उनको टच करते हैं। हम लेजर को यूज करके शरीर को हील करते थे, आज से हम उनके मन को भी हील करेंगे। जस्ट लुक एट देम कि वो आपके सामने आकर बैठते हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, दर्द में हैं, और हमारी वाइब्रेशन उनको छू जाती है। वो आत्मा भी शांत हो जाती है। हम डबल डॉक्टर हैं, हम मन को और शरीर को दोनों को हील करेंगे। जैसे जैसे थॉट्स चल रही थी, वर यू एबल टू विजुअलाइज द सीन? हाउ मेनी वर एबल टू विजुअलाइज द सीन? ओके, जैसे ही विजुअलाइज किया तो कुछ और याद नहीं आएगा फिर साथ में। जितनी देर हम अभी मेडिटेशन कर रहे थे, क्या उतनी देर मन उसी पर था? भले बीच में थोड़ा सा भी अगर गया हो तो वापस आ जाता है, लेकिन मोर और लेस, हाँ, एंड वी डिड इट फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में कौन कौन फील करता कि एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स हमारा मन उसी के साथ था जो हमने करना था। इजी है, इजी है ना? अब अगर रोज सुबह हम ऐसे बैठे 5-7 मिनट एंड ये वाइब्रेशन क्रिएट करें, ये थॉट क्रिएट करें, अपने मन को तैयार करें, और घर बैठे, अभी हॉस्पिटल गए नहीं है, घर बैठे ही हम अपनी वाइब्रेशन अपने सभी पेशेंट्स को, अपने स्टाफ को, और सारा दिन में जो हमें मिलने वाले हैं, हम पहले से ही उनको टच करना शुरू करते हैं। तो आप सोचो सारा दिन में फिर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, यस। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी साइंटिफिक, वेरी प्रैक्टिकल एंड विद 110% रिजल्ट। सिर्फ किसी को करके देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। जैसे जो सर्जरी करते हैं तो नेचुरल है, भले हम कितने भी सालों से करते आए हैं, फिर भी आई फील कि जब हम ओटी में जाते होंगे तो एक थॉट तो चलता होगा या नहीं चलता होगा जाने से पहले, हाँ, आता है या नहीं आता है? अच्छा, करते समय अगर थोड़ा सा भी कुछ लगे कि चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही हैं, तो मन क्या हो जाता है, थोड़ा हलचल में आ जाता है। अगर हम ओटी में जाने से पहले जैसे अपनी बाकी सारी तैयारी करते हैं, कितनी तैयारी होती है एक सर्जरी से पहले, होती है ना त्यारे, आप देखो आज तक हम अपने हर कर्म के लिए राइट फ्रॉम व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग इन स्कूल हम सारी तैयारी बाहर की करते थे, डेस्क बनाया, बुक्स लिखी, टाइम टेबल बनाया, दूध का कप मम्मी साथ में रख के जाएगी, ये होगा वो होगा, पूरी तैयारी हो जाएगी सारी। जिसने पढ़ना है, किसने पढ़ना है, पढ़ना किसने था, मन ने पढ़ना था, उस मन की तैयारी नहीं की स्टडी टेबल पर बैठने से पहले। और फिर क्या होता था, बैठते थे, कौन बैठता था, शरीर बैठता था, मन कभी इधर जाता कभी उधर जाता, उधर जाता फिर बीच बीच में थोड़ी देर के लिए आ भी जाता। सेम जब हम पूजा पाठ हवन कीर्तन भी किया, सब तैयारी बाहर की ना, बाहर की तैयारी, कितनी तैयारी होती है आजकल तो, मतलब अगर हम जागरण करें या कोई ऐसी चीज करें, वी इन दिल्ली आई हैव सीन पीपल हैव इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो जाकर पूरा करते हैं घर पे आकर, बिकॉज इट्स बिकम लाइक एन इवेंट पूरा, इतनी तैयारी, इतनी सजावट, इतना सब कुछ। लेकिन जिसने हवन करना है या जिसने वो जागरण करना है उसकी तैयारी नहीं करते, तो सब तैयारी करने के बाद वहां बैठते हैं करने के लिए, तो जिसके लिए वो हो रहा है वो घूमने जाता है। हुआ ना ऐसा? तो हर कर्म करने से पहले जितनी मेहनत हम बाहर की तैयारी पर करते हैं उसके साथ साथ हमें 2 मिनट मन की तैयारी के लिए देना है। एक पेशेंट से मिलने से पहले या कोई प्रोसीजर करने से पहले या ओटी में जाने से पहले कितनी तैयारी होती है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या तैयारी होती है? आधा घंटा तो होती होगी तैयारी कम से कम। यस, कैन वी एड 2 मिनट्स मोर टू दैट हाफ एन आवर नाउ? यस, उस 2 मिनट्स में हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी बैठे हैं, आप अकेले बैठ जाइए अपने कमरे में, ओके, अपने रूम में अकेले बैठ जाइए एंड विजुअलाइज, आई एम अ प्योर सोल एंड गॉड हैज चोजन मी टुडे टू हील दिस सोल हु हैज कम टू मी टुडे। कनेक्ट विद सोल टू सोल, ना कि ये शरीर मेरे सामने आया जिसको मैंने काटना फटना है। कॉन्शियसनेस शिफ्ट बहुत बड़ी चीज है। गॉड हैज मेड मी एन इंस्ट्रूमेंट टू हील दिस सोल हु हैज कम टू मी टुडे। जैसे जब सर्जरी हो जाती है तब हम बाहर आके परिवार को कहते हैं कि हमने अपना बेस्ट कर दिया, अब बाकी सब उसके हाथ में है, तो वो सर्जरी से बाद बोलने की जगह सर्जरी के पहले ही उसके हाथ में डाल देना चाहिए था। करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? उसके हाथ में कब डालना चाहिए? परिवार को बोलने की बजाय कि अब उसके हाथ में है, क्यों ना सर्जरी से पहले ही हम उसको बोलें कि सब कुछ आपके हाथ में है एंड आप आ जाओ मेरे साथ ये सर्जरी करने के लिए। फियर का एक भी अगर थॉट होगा वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे हाथ में इंस्ट्रूमेंट है वैसे हम उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट को कोई एंग्जाइटी और फियर नहीं होता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाले की होती है। तो यूज करने वाले की बजाय इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। तो 2 मिनट साइलेंस में बैठे, सिट लाइक दिस डिटैच्ड, इट इज गॉड यूजिंग मी टू हील हिज चाइल्ड। एंड देन परमात्मा से एक बहुत पावरफुल प्योरिटी की रे, जैसे एक लेजर बीम होती है ना, सूर्य की किरण कैसे आती है, ऊपर से नीचे हमारे पे ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे ही परमात्मा से एक लेजर बीम मुझ पर यहां आती है और मुझसे उस आत्मा को जा रही है जो मेरे सामने अभी आने वाला है, एंड फिर अपने आप को एंड उस आत्मा को और आपके साथ जो सारा स्टाफ खड़ा होने वाला है उस सर्जरी के अंदर, उन सबको वो प्योरिटी की वाइट लाइट दे दो सर्जरी से पहले। पहले यू ओटी को भी एक बहुत अच्छी ऐसे वाइब्रेशन दे दो सबको, तो कण कण में क्या भर जाएगा उस सर्जरी रूम के. दिस होल शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस विल मेक द होल प्रोसीजर वेरी इजी, वेरी लाइट, एंड थ्रू आउट द प्रोसीजर कनेक्टेड रहना. जैसे अगर आपके साथ, आप रोज सर्जरी करते हैं सपोज, लेकिन एक दिन आपके साथ कोई आपसे भी सीनियर साथ में आके खड़े हो जाए, होता है ना ऐसे कभी कभी, तो आप रोज करते हैं, यू आर मास्टर इन दैट. लेकिन अगर कोई सीनियर साथ में आके खड़े हो जाए तो हम क्या करते हैं प्रोसीजर करने के टाइम, क्या करते हैं? इमेजिन ना, आपके कोई बहुत सीनियर आ जाए, आपके साथ खड़े हो, कर आप रहे हैं, वो नहीं कर रहे, लेकिन वो सिर्फ साथ में खड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? या इवन ए सिंपल थिंग कि जब हम बहने किचन में खाना बनाती हैं, रोज बनाती हैं, लेकिन किसी दिन हमारी मदर या मदर इन लॉ साथ में आके खड़ी हो जाए, बना फिर भी हम रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? करते करते एक दृष्टि उधर करेंगे ना ऐसे, बस जब ये एक दृष्टि भी उधर कर ली ना, तो जिम्मेवारी किसकी हो गई? तो बीच बीच में हम तो यही करते हैं सारा दिन, आप भी करके देखो, जीवन लाइट हो जाती है एकदम. क्योंकि आपको ये अनुभव होगा कि कई बार आपको बड़ी एक स्ट्रांग टचिंग आएगी कि क्या करना है अभी एग्जैक्टली. आप सोच कुछ और रहे थे और एकदम से आपको बड़ा ही एक स्ट्रांग थॉट आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे करो. एंड जैसे ही माइंड रिलैक्स्ड होगा, कनेक्टेड होगा, तो बॉडी की एफिशिएंसी भी, गुस्सा करना और वो सब तो फिर पॉसिबल है ही नहीं, वो तो आएगा ही नहीं. जब हम रिलैक्स्ड रहेंगे, हमारा वाइब्रेशन हमारी पूरी टीम को टच होगा. उसमें कोई नया है, कोई इंटर्न है, कोई नर्स है, हम एक्सपर्ट हैं वो तो नहीं है, तो उनके अंदर फियर है. ये सब फियर, अगर हमारे साथ 10 लोग खड़े हैं, उनका फियर भी तो फियर की वाइब्रेशन तो क्रिएट कर रहा है ना. हील द माइंड एंड देन द बॉडी. एंड उसके लिए चारों तरफ जो लोग खड़े हैं, सबको कैसा होना होगा? रिलैक्स. तो जो टीम का लीडर है, जब उसकी स्थिति ऐसी होगी, वाइब्रेशन ऐसी होगी, तो पूरी टीम भी कैसी हो जाएगी, पूरा वातावरण वो ओटी नहीं, आपको मंदिर जैसा बन जाएगा. बना सकते हैं? नहीं बना सकते. इस स्थान की वाइब्रेशन अच्छी लग रही है ना, तो वो वाइब्रेशन, और ये स्थान की नहीं, किसी भी स्थान पे हम जाते हैं, हमें वाइब्रेशन अच्छी लगती है. वो वाइब्रेशन बनती कैसे है? ये स्थान में क्या है? कुछ भी तो नहीं है, दीवार, छत, कुर्सी. वाइब्रेशन कैसे बनी है? थॉट्स. थॉट्स ऑफ किसकी थॉट्स? जो वहां रोज रहते हैं या जो ऐसे आते हैं. अब आप जहां रोज रहते हैं, घर और हमारा हॉस्पिटल, वो भी तो ऐसे ही है, वो भी तो चार दीवारें, एक छत और कुर्सी और टेबल है, और क्या है? क्या हम उसकी वाइब्रेशन नहीं ऐसी बना सकते हैं? आपको लगता है अगर इस वाइब्रेशन में किसी की सर्जरी करनी हो तो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट निकलेगा? एंड बेटर रिजल्ट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सर्जरी. सर्जरी तो अच्छी ही होती है, रोज सक्सेसफुली है, बट बेटर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोसीजर. कल, मेरे को याद नहीं वो डॉक्टर कहां बैठे हैं, कल उन्होंने कहा सर्जन सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड है, एंड कुछ फिगर दिया 50% समथिंग, कि उनको बर्न आउट हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद, विच इज बिकॉज एवरी डे प्रेशर ऑफ लाइफ एंड डेथ. जिस आत्मा के ऊपर एवरी डे प्रेशर ऑफ लाइफ एंड डेथ आएगा, एंड कई बार डेथ को भी देखना पड़ेगा, फिर इतने लोगों का पेन का रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, बिकॉज इवन भले गलती हमारी नहीं, लेकिन सब लोग दर्द का वाइब्रेशन तो किसके लिए क्रिएट करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये सारा जो हमें एनर्जी मिलने वाली है, ये हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी. तो हम जैसे ग्लव पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? आप कितनी भी जल्दी में हो, कैन यू जस्ट गो एंड टच समबडी विदाउट वेयरिंग योर ग्लव? यू कांट. कितनी भी बिजी हो, सिमिलरली वी कैन नॉट टच एनीबडी इमोशनली विदाउट प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ. जैसे अपने आप को कवच में नहीं डाला और उनको छू लिया, छू लिया मतलब मन ने मन को छू लिया, उनका दर्द हमारा दर्द बन जाएगा. शरीर को अगर हाथ से छू लिया तो क्या होगा? इन्फेक्शन हमें मिलेगी. इसी तरह सारा दिन जिनको इतने क्रिटिकल पेशेंट, फिर उनके साथ इतने दर्द वाले परिवार को मिलना है, तो बर्नआउट होना या स्ट्रेस्ड होना या उससे ज्यादा एक लेवल पे जाना हो सकता है, हो सकता है. और पूरे दिन का फिर वो वातावरण हम शाम को अपने घर लेकर आते हैं. अगर हम ये दो मिनट, सिर्फ दो मिनट हर सर्जरी से पहले करना शुरू करते हैं, तो ये बर्नआउट, ये स्ट्रेस, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा. और अगर कभी हमारा बेस्ट करने के बाद भी रिजल्ट बेस्ट नहीं आता है, होता है ना ऐसे कई बार, किसी को भी ट्रीट करने के बाद रिजल्ट बेस्ट नहीं आता, तो कई बार हम गिल्ट में चले जाते हैं और वो गिल्ट हमारे कॉन्फिडेंस को अगली बार के लिए थोड़ा सा लो कर देता है. एंड दिस गिल्ट इज नॉट गुड फॉर मी, नॉट गुड फॉर माई नेक्स्ट पेशेंट, नॉट गुड फॉर एनीबडी. तो जब हम इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस से करेंगे और हमें ये पता होगा कि हमने अपना बेस्ट किया, एंड कई बार ये भी हो सकता है कि हमसे ही कोई गलती हुई है, कई बार हो सकता है गलती नहीं हुई थी फिर भी रिजल्ट ठीक नहीं निकला, लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि गलती भी हुई थी, एंड इट्स ओके. कोई भी जो भी काम करता है, रोज करते हैं, तो हरेक से कभी ना कभी छोटी सी गलती हो सकती है. सिर्फ ये है कि हमारी गलती किसी और के लिए कभी कभी बहुत, बाकी किसी प्रोफेशन में वो नहीं होता है, लेकिन गलती तो हर एक प्रोफेशनल से हो रही है, हर एक प्रोफेशनल से हो रही है. सिर्फ ये है हमारी गलती के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम उस गलती को नेक्स्ट सीन पर आने नहीं दे सकते. उस चीज में एक चीज याद रखनी है, नॉट टू मेक अस केयरलेस, वी डू आवर बेस्ट, बट फिर भी अगर कुछ हो जाता है, वी ऑलवेज नीड टू रिमेम्बर वन थिंग, कि उस आत्मा का भी कोई अपना कार्मिक अकाउंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर आत्मा का एक कार्मिक अकाउंट होता है. हम इंस्ट्रूमेंट हैं उसको ठीक करने के लिए, हम उसका भाग्य नहीं लिख रहे हैं. उसका भाग्य कोई डॉक्टर नहीं लिखता, उस आत्मा का भाग्य कौन लिखता है? वो खैर हम बाद में देखेंगे 11 बजे वाले सेशन में. लेकिन उस आत्मा के साथ वो ही होगा जो उसके भाग्य में लिखा है. वी नीड टू रिमेम्बर दिस. लेट्स नॉट पुट सो मच प्रेशर ऑन आवर सेल्फ कि जैसे कि हरेक का भाग्य हमारे हाथ में है. हम इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन हमारे थ्रू भी होगा वो जो उस आत्मा का भाग्य है. आप देखो अभी जैसे पिछले 2-3 महीने में हमने कई एयर क्रैश के बारे में सुना, तो अगले दिन अखबार में पढ़ो तो कितने सारे केस आएंगे कि फलां जाने वाला था, फिर एक दिन पहले या एक घंटा पहले उसने कोई अपनी ड्यूटी चेंज कर ली, किसी और को भेज दिया, वो नहीं गया. एक कपल का आया कि दो हुए ना मलेशियन एयरलाइंस के क्रैश 2 महीने के गैप पे, तो जो फर्स्ट वाला हुआ उसमें वाइफ ने जाना था, दोनों स्टाफ हैं उस एयरलाइन के अंदर, तो जो फर्स्ट वाला हुआ उसमें वाइफ ने जाना था, लेकिन उसकी ड्यूटी चेंज हो गई, उसकी जगह कोई और चला गया, द वाइफ गॉट सेव्ड. जो सेकंड हुआ उसमें हस्बैंड ने नहीं जाना था, ड्यूटी चेंज हुई, हस्बैंड वेंट एंड द सोल लेफ्ट द बॉडी. तो ये किसने डिसाइड किया? हमारी पावर हील करने की है, लोगों की डेस्टिनी लिखने की नहीं है। ये करके अपने आप को लाइट रखना है, क्योंकि जितना अपने आप को लाइट रखेंगे बेटर हील करेंगे। जितना अपने ऊपर जिम्मेवारी रख देंगे प्रेशर की, उतना हीलिंग की एनर्जी ब्लॉक होगी। तो हम अपना 100% से भी ज्यादा बेस्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें अपने आप को लाइट करना होगा, नहीं तो द इफेक्ट कैन गो वेरी लॉन्ग टर्म। लास्ट वीक आई जस्ट मेट अ डेंटिस्ट, सर्जरी भी नहीं, डेंटिस्ट। शी सेड, आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। आई सेड, डिड यू डू योर बेस्ट? यस, बट वो ठीक नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। एंड वो पूरा दिन उसके बाद वो किसी और को नहीं हैंडल कर पाए। सो दिस वी कैन नॉट डू, दिस वी कैन नॉट डू। तो हमेशा एक लाइन ये पक्की रखना, मैं उस आत्मा और शरीर को हील कर रही हूं, भाग्य नहीं लिख रही हूं। जो हम कहते हैं ना, जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है, नहीं, आपके हाथ में नहीं है उसकी जीवन और मृत्यु, आपके हाथ में नहीं है। इतना प्रेशर लेकर चलना जीवन में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, राइट है, लगता है? हाँ, तो ये 2 मिनट ऐड करेंगे हर सर्जरी से पहले, हर सर्जरी से पहले। एंड अगर ये 2 मिनट अपने रूम में करके आना पहले, और फिर जब ओटी में जाएंगे और सब खड़े हो जाएंगे, पेशेंट तो सोया हुआ है तो उसको तो पता नहीं चलेगा कुछ, लेकिन हम सब तो खड़े हैं, 30 सेकेंड्स एवरीबडी स्टैंड इन साइलेंस, प्रे, अपने अपने तरीके से प्रे करो, सबको सबको। खाना खाने से पहले प्रे करते हैं, कोई अच्छा काम करने से पहले प्रे करते हैं, हर रोज बचपन में एग्जाम में जाने से पहले प्रे करते थे ना, करते थे नहीं करते थे? तो उस एग्जाम से बड़ा एग्जाम तो हर रोज है हमारे सामने, तो क्या उससे पहले 1 मिनट हर एक को प्रे नहीं करना चाहिए? तो 1 मिनट कॉन्शियसनेस शिफ्ट, सारी टीम को बोलो 1 मिनट अपनी अपनी रीति से, जिस रीति से हर एक करता है, परमात्मा को याद करो 1 मिनट सर्जरी से पहले और 1 मिनट सर्जरी के बाद। और जब सर्जरी के बाद हम करते हैं, परमात्मा शुक्रिया, परमात्मा शुक्रिया, टीम पूरा बहुत शुक्रिया, ये पूरी फैसिलिटी जो मुझे मिली इस आत्मा को हील करने के लिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर उस आत्मा को पावरफुल वाइब्रेशन दे दो, ये जल्दी से ठीक होकर घर जाएगा। भाई रिलैक्स्ड, एंड रिलैक्स होकर बाहर निकल कर आओ। दिस इज मेडिटेशन प्रैक्टिकली। मेडिटेशन इज नॉट फॉर 10 मिनट्स ओनली सिटिंग एट होम, बट हर कर्म को मेडिटेटिव बना देना है, क्योंकि हर कर्म में हम हल्के होकर अगर करेंगे, ये इजी लगता करना, इजी होगा, इजी होगा, इजी होगा। अब इसको सिर्फ सर्जरी के लिए नहीं, सारा दिन हीलिंग में भी यूज कर सकते हैं। एक पेशेंट बाहर जाएगा, अगला अंदर आएगा, 5 सेकेंड का टाइम तो है ही है। आई एम अ डिवाइन सोल, परमात्मा मुझे टच करना, इनको क्या देना है, इनके साथ क्या करना है। जैसे कल अवधेश भाई बता रहे थे ना, कौन सी एंटीबायोटिक लिखनी है, ये भी इंट्यूटिव से है। तो इंट्यूटिव भी अच्छी किसकी वर्क करेगी, इंट्यूशन किसकी अच्छी वर्क करेगी, जिसका माइंड शांत होगा। जब माइंड स्ट्रेस्ड होता है तो इंट्यूशन नहीं वर्क कर सकती। फिर हम उस समय एक्चुअली इंट्यूशन से नहीं वर्क कर रहे, हम पास्ट एक्सपीरियंस से वर्क कर रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंस और इंट्यूशन में फर्क है, फर्क है, पास्ट एक्सपीरियंस और इंट्यूशन में फर्क है। क्या फर्क है पास्ट एक्सपीरियंस और इंट्यूशन में, क्या फर्क है? इतने सालों से इतने लोगों को दवाई दे रहे हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस से लिख देंगे, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस और इंट्यूशन में क्या फर्क है? पास्ट एक्सपीरियंस कर करके हम मास्टरी है उस चीज के ऊपर, लेकिन दैट इज आर लॉजिकल माइंड वर्किंग, कि लॉजिक से मुझे अपनी पढ़ाई से, मुझे अपनी ट्रेनिंग से, मुझे अपने पास्ट के अनुभव से ये पता है कि इस केस के लिए ये दवाई ठीक है. सो माय लॉजिकल माइंड वर्क्स. इंट्यूशन में लॉजिक माइंड डजंट वर्क. इंट्यूशन मीन्स आपको सडनली सबकॉन्शियस में, जब ये कॉन्शियस माइंड साइलेंट होगा, पास्ट एक्सपीरियंस कॉन्शियस माइंड का काम है. कॉन्शियस माइंड मीन्स द टॉप लेयर ऑफ द माइंड, जो सारा दिन सोचती है एंड विच ऑल्सो गिव राइट डिसीशन, वो राइट देती है डिसीशन. लेकिन जब ये कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता है, मतलब ज्यादा चलता नहीं है कंटिन्यूसली ऐसे, और हम साइलेंट हैं, तो कभी कभी ऐसी थॉट आएगी जो एक्चुअली आपको लॉजिकली राइट भी नहीं लगेगी कई बार. जैसे जब हम ट्रैवल करते हैं बाय रोड एंड आप ऐसे एक दो राह पर आ गए, यहां जाएं या यहां जाएं, ठीक है. एक होता है लॉजिक से कि यहां जाए या यहां जाए, और एक होता है नहीं मुझे फील हो रहा है कि यहां जाना है. तो वो गट फीलिंग जिसको कहते हैं और लॉजिक, दोनों में बहुत फर्क है. और कई बार जो इंट्यूशन कहता है वो लॉजिक से अलग होता है, वो लॉजिक से अलग होता है. लेकिन जब वो इंट्यूशन है, वो इतना स्ट्रांग आएगा आपको थॉट, इतना स्ट्रांग थॉट आएगा कि आपको उस पर कोई डाउट नहीं आएगा कि ये राइट है या रॉन्ग है, वो नहीं आएगा उसके बाद. दैट इज व्हेन द इंट्यूशन इज राइट. लॉजिक में आपको डाउट भी आ सकता है, इंट्यूशन में कभी डाउट नहीं आएगा. लेकिन इंट्यूशन हमारी तब वर्क करेगी जब हमारा टॉप लेयर ऑफ माइंड, जो सारा दिन चलता रहता है ऐसा, ये साइलेंट होगा. और इसलिए अगर हम 10 सेकंड्स भी अपने माइंड को साइलेंट कर लें, आई एम अ प्योर सोल, द नेक्स्ट वन हु इज कमिंग टू मी अनदर प्योर सोल, आई एम इंस्ट्रूमेंट टू हील, मेरी वाइब्रेशन फिर से अपने आप को एक व्हाइट लाइट के कवच में. अब क्या होगा, हमारी वाइब्रेशन उनको पहुंचेगी रादर देन उनका दर्द हमें पहुंचे. छोटी छोटी चीजें, और ये तब याद रहेगा अगर हमने घर से निकलने से पहले सुबह किया होगा, सुबह किया होगा. तो कल जैसे हमने देखा और आज सुबह भी आपने मेडिटेशन में किया, 4 बजे कौन कौन था? वाओ, आपको मालूम है यहाँ 18 प्रोफेशंस आते हैं, 18 विंग्स बने हैं. जैसे मेडिकल विंग है ना आप, तो 18 विंग्स बने हैं. लेकिन आपका ही विंग है जो इतना सिंसियरली 4 बजे से रात के 9 बजे तक बैठता है पूरे टाइम. एंड दिस इज एवरी टाइम एंड एवरी ईयर. एंड आई ट्राई टू थिंक कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन मुझे लॉजिक नहीं पता चलती है कि क्या लॉजिक है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही इतना सिंसियरली कैसे करते हैं पूरी चीज को. बट देर इज सम रीजन एंड दैट्स वाई I personally love to come for this conference. In the whole year, I have not come for any other. I love to come here. क्योंकि जब सबको करने में कुछ मजा आ रहा होता है, तभी तो बैठने का भी मजा होता है. नहीं तो इतने सब 4 बजे आना, मतलब आप सच्ची में कितने विशेष आत्माएं हैं. क्योंकि आपके अंदर सिंसियरिटी का गुण है. सिंसियरिटी के संस्कार हरेक के अंदर नहीं होता है. जैसे कल डॉक्टर अवधेश ने कहा ना, वी आर द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ सोसाइटी. तो ब्रेन्स मतलब इंटेलिजेंस भी, सिंसियरिटी भी, हार्ड वर्किंग भी. तो जिस आत्मा के अंदर ये 3 संस्कार है, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस, वो आत्मा जो करने का सोचेगी उसमें वो संस्कार तो यूज हो जाएगा. तो चाहे आप प्रोफेशन में उसको करो, चाहे उसको किसी भी क्षेत्र में करो, इट विल गेट डन. It will get done. तो जैसे हमने आज सुबह 4 बजे भी किया, कल शाम को भी देखा कि परमात्मा को हम आज दिन तक याद करने की कोशिश करते थे, मन भटकता था, बिकॉज वी डिंट हैव क्लैरिटी कि हम किसको याद कर रहे हैं, और हमें उसके साथ एक रिश्ता भी नहीं एक्सपीरियंस होता था. रिश्ता क्यों नहीं एक्सपीरियंस होता? रिश्ता किसके साथ बनता है? जैसे सपोज आप यहां किसी को पहली बार मिले फ्राइडे को आकर, तो पहले दिन थोड़ी कोई रिश्ता है. पहले दिन हेलो, आई एम सो एंड सो, ओके. फिर आप सैटरडे मॉर्निंग उनको फिर नाश्ते पे मिल लिए, फिर थोड़ा 5 मिनट और बात हो गई, फिर इवनिंग फिर मिले, फिर रात को भी मिले, फिर आज भी मिले, तो थोड़ी ज्यादा बात होने लगी। अब अगर यहां से चले गए अपने घर तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर जाने के बाद भी कॉन्टैक्ट रखा कि हफ्ते में एक आधी बार हेलो हुई तो थोड़ा और रिश्ता बना। फिर कई लोगों के साथ ऐसा रिश्ता बनता है कि हफ्ते में रोज ही एक बार बात होने लग जाती है, होता है या नहीं होता? तो जिसके साथ हर रोज बात होती है उसके साथ रिश्ता और अच्छा बनता है। कई लोगों के साथ तो ऐसा रिश्ता बन जाता है जो दिन में दो तीन बार हेलो हो जाती है, तो उनके साथ रिश्ता और अच्छा बनता है। अब आप देखो जिनके साथ, देखो लॉजिक, जिनके साथ हम दिन में दो तीन बार बात करते हैं उनके साथ हमारे पास बात करने के लिए ज्यादा होता है, और जिनको हम महीने में एक बार मिलते हैं उनके साथ हमारे पास बात करने के लिए कम होता है। होता है या नहीं होता? होना तो ऑपोजिट चाहिए, एक्चुअली होना तो ऑपोजिट चाहिए कि जी महीने में एक बार मिले हैं तो कितना कुछ होना चाहिए बात करने के लिए। यहां दिन में दो तीन बार बात करते हैं फिर भी आधा घंटा फोन पे बात हो गई, पता कहते पता नहीं चला टाइम बीत गया। होता है? ये कैसे हुआ कि महीने में एक बार मिलते हैं, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, आपके बच्चे ठीक है? हाँ मेरे भी बच्चे ठीक है, मौसम भी बहुत अच्छा है, अभी और क्या बात करें, पता ही नहीं चलता। और जिसके साथ दिन में दो तीन बार बात करते हैं उसके साथ फिर डायल लग गया नंबर, फिर आधा घंटा बात हो गई। तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या? जिनके साथ कभी कभी मिलते हैं ना उनके साथ हम अपनी लाइफ शेयर नहीं करते ना, वो हमारे साथ अपना शेयर करते हैं, तो उनके साथ दो तीन बातें करने के बाद हमें पता ही नहीं चलता बात क्या करनी है। और जिसके साथ दिन में दो बार बात कर लेते हैं उनके साथ हम हर बात शेयर करते हैं, तो पिछले आठ घंटे में भी जो हुआ होता है वो भी हमने उसको बताना है। अब भगवान के साथ कितनी बार बात करते हैं, कितनी बार बात करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते भी हैं या नहीं बात करते हैं, या किसी और की लिखी हुई बात उसको पढ़कर सुनाते हैं? अब पता चला क्यों नहीं रिश्ता बन रहा। अगर रिश्ता होता हम बैठते उसके साथ बात करने के लिए, चार के पांच कप बच जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, कहेंगे ओ अभी तो बहुत सारी और बातें करनी थी। हम आज दिन तक क्या करते आए? कल किसी ने रात को कहा हम भी तो रोज पूजा पाठ करते हैं, व्हाट इज डिफरेंस, व्हाई टू मेडिटेट, व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? देयर इज नो डिफरेंस, डिफरेंस इज ओनली कि नाउ वी विल डू विद मोर क्लैरिटी व्हाट वी आर डूइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द माइंड विल डू, नॉट द हैंड्स एंड द माउथ। क्योंकि चार्जिंग आत्मा की करनी थी, शरीर की नहीं। हवन करते हैं, पूजा करते हैं, जागरण करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं। आप में से कौन कौन जाता है हरिद्वार या कहीं भी गंगा स्नान करने? किस इंटेंशन से जाते हैं? किस इंटेंशन से? इंटेंशन होती है ना हर चीज के करने से पहले, एक इंटेंशन होती है। किस इंटेंशन से जाते हैं? हम जाएंगे तो हमारे सारे पाप क्या हो जाएंगे? हुआ हुआ जी, नेचर देखने को जाते हैं, ओके दैट्स इट, इंटेंशन हैज टू बी वेरी क्लियर। नेचर देखने जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, उस स्थान की पवित्र वाइब्रेशन को अनुभव करने के लिए जाते हैं, अच्छा लगता है इसलिए जाते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन आत्मा पवित्र हो जाएगी इसलिए जाते हैं तो वो फिर पूछना पड़ता है कि हुई या नहीं वापस आने के बाद। टुपुक, कौन अंदर गया और कौन बाहर आया? शरीर अंदर गया, धुला, पवित्र पानी से धुला और बाहर आया। शुद्धिकरण किसका करना था? आत्मा का। कर्म किसने किए थे? संस्कार किसके नेगेटिव बने थे? संस्कार किसके चेंज करने थे? आत्मा के। तो स्नान किसका कराना पड़ेगा रोज? हम क्या करते हैं, पूरे साल में हमें जो करना है हम करते हैं, फिर साल के एक दिन हम जाते हैं, हम कहते हैं सब धुलाई हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वापस आने के बाद एग्जैक्टली वो ही करते हैं जो जाने से पहले कर रहे थे। एटलीस्ट जाके आके एक थॉट तो लेना चाहिए कि हम वहां से होकर आए हैं, आज से हम अपना ये कोई एक चीज तो आज से चेंज करते हैं, देन ऑल्सो इट इज शुद्धिकरण। लेकिन अगर गए और सेम वापस आए देन नो। एंड कई बार तो वहां पे भी स्ट्रेस क्रिएट हो गया, झगड़ा भी हो गया किसी से, हो जाता है ना, हॉलीडे पे कई बार ज्यादा झगड़ा होता है। आपको मालूम है हाईएस्ट डिवोर्स रेट हॉलीडे सीजन का है? नो नो, मतलब स्टडी रिसर्च वाइज स्टैटिस्टिकली, विदेश का उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा आर्टिकल आया, हाईएस्ट डिवोर्स रेट ड्यूरिंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो मेरे को लगा, मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या पढ़ा, बिकॉज दैट वॉज लाइक टाइटल। मैंने कहा ऑपोजिट होना चाहिए था, तो उसमें लिखा था कि पूरे दिन में तो टाइम ही कहां अपने साथ स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन छुट्टी के टाइम एक हफ्ता तब डिसीजन ले लेते, हम एक इकट्ठे रह नहीं सकते। तो हॉलिडे पे भी ऐसा होता है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर। अब हवन कर रहे हैं हम, तो हवन क्यों करते हैं? शुद्धिकरण के लिए करते हैं। शुद्धिकरण किसका करना? माइंड। हम क्या करते हैं, हवन कुंड हमने जलाया, आहुति की थाली हमारे सामने है, पंडित जी मंत्र बोलते हैं। कई बार हमें वो मंत्र का मीनिंग समझ में भी नहीं आता, लेकिन हम कहते हैं चलो पंडित जी कर रहे हैं ना हमारे घर में हवन, तो शुद्धिकरण हो जाएगा। पंडित जी हवन करेंगे तो पंडित जी का शुद्धिकरण होगा, ऑब्वियसली जो करेगा उसी को तो उसकी प्राप्ति होगी ना। और हम क्या कर रहे हैं, हम उस किताब जो पंडित जी हमें देते हैं, हम उसमें ढूंढ ही रहे होते हैं वो कौन सी लाइन पे। मैं तो एटलीस्ट ढूंढती थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता था वो क्या बोल रहे हैं और वो लाइन कहाँ है वो किताब में, क्योंकि इट इज लैंग्वेज विच आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग। देन ईदर यू हैव टू आस्क देम प्लीज एक्सप्लेन व्हाट ऑल दिस मीन्स, नहीं तो वी गॉट नथिंग आउट ऑफ इट। फिर हम बड़े प्यार से सामग्री को डालते जाते हैं, एंड में पूरी थाली में सब कुछ जो बचता है हम डालते हैं, कहते हैं स्वाहा। क्या स्वाहा करना था एक्चुअली, क्या स्वाहा करना था ये मैंने इनके बारे में पकड़ के रखा स्वाहा, ये पुरानी बात मुझे अभी तक भूलती नहीं है, बार बार मुझे परेशान करती है स्वाहा, मेरी ये आदत मुझे और मेरे घर को कितना तंग करती है स्वाहा, और एंड में सब कुछ जो गंदा पकड़ के रखा है सारा कुछ स्वाहा। तो हवन करें, लेकिन हवन करते हुए हवन करना कहां है कि जैसे जैसे वो हाथ वो सामग्री डाले साथ साथ मन भी तो कुछ डाले ना, नहीं तो मन सोच रहे वो क्यों नहीं आए, उनके हवन पे तो मैं गया था, मैं नहीं जाऊंगा अगली बार उनके हवन पे। और फिर वो बहन क्या कौन सी साड़ी पहन कर रहे, पंडित जी आए कि नहीं आए, घी आया कि नहीं आया, फूल आए कि नहीं आए, हवन परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। आज क्या हुआ, रिचुअल की परफेक्शन पर स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पंडित जी भी हमें डरा देते हैं कि अगर थोड़ा भी इम्परफेक्शन हो गया, थोड़ा भी विधि में अगर इम्परफेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी विधि में इम्परफेक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, एक मिनट अपने आप से पूछना, जो सुना पढ़ा उसके पीछे भी भाव है, हमें भाव नहीं पता, क्या अनर्थ हो जाएगा, क्या अनर्थ हो जाएगा, क्या कुछ गलत हो जाएगा? श्योर ऐसे नहीं बोलना, थिंक क्या कुछ गलत हो जाएगा अगर मेरे से ऐसे की जगह ऐसे हो गया कुछ, तो सपोज मैंने राइट हैंड से सामग्री डालने की बजाय लेफ्ट हैंड से डाल दी, कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या भगवान मुझसे नाराज होके मुझे कोई श्राप दे देगा? तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोलेगा तो उनको बोलना नहीं पंडित जी ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि परमात्मा तो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है, वो सुख देने वाला सागर है, वो कभी भी गुस्सा नहीं होता है। अगर आपका बच्चा कल सुबह उठकर आपके लिए नाश्ता बनाए उसने कहा आपका बर्थडे है, आपके उठने से पहले मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूं। पहली पहली बार किचन में जा रहा है, सब किचन गंदा कर दिया और फाइनली नाश्ता भी काफी, और फिर वो सब जला और खराब और खट्टा मीठा फीका बड़े प्यार से प्लेट में सजा के आपके सामने ले आया। और किचन तो ऐसा है कि आपको 4 घंटा लगेगा अभी वो किचन को ठीक करने में। तो आप क्या करेंगे नाश्ता देखने के बाद? आप क्या करेंगे नाश्ता देखने के बाद? क्या करेंगे? खुश होंगे ना? क्यों खुश होंगे? क्योंकि हम एक्यूरेसी नहीं, उस कर्म के पीछे की भावना देखते हैं। जब हम भी भावना देखते हैं एक्यूरेसी नहीं, तो वो क्या देखता होगा? वो क्या देखेगा? वो भी तो भावना देखेगा, उस चीज की एक्यूरेसी थोड़ी देखेगा। इसीलिए कभी भी रिलीजन में कुछ भी ऐसा नहीं करना जिसमें फियर क्रिएट होता है, क्योंकि जैसे ही फियर क्रिएट हुआ तो भावना फियर वाली हो गई, और जैसे ही भावना फियर वाली हो गई तो फिर उस हवन का रिजल्ट मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने फियर क्रिएट कर दिया। परमात्मा कभी नाराज नहीं होते, कुल देवी कुल देवता कभी नाराज नहीं होते। अगर वो नाराज हुए तो वो देवी देवता नहीं है, क्योंकि देवी देवता दिव्य गुण 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, वो हमारे जैसे नाराज थोड़ी हो जाएंगे जैसे हम अभी नाराज होते हैं। और हमने तो देखा हम भी नाराज नहीं होंगे, अगर बच्चा कुछ ऐसे करके आए तो वो कैसे नाराज होंगे? व्रत करना है, उपवास करना है, तबीयत ठीक नहीं है तो भी करना है। क्यों करना है? भी नहीं ठीक है तबीयत, नहीं करो, नहीं फिर कुछ गलत हो जाएगा। इंटेंशन जब फियर की है तो रिजल्ट कैसे आएगा? एक्यूरेसी करनी थी विधि में, लेकिन कहां की विधि में एक्यूरेसी करनी थी? विधि से सिद्धि मिलती है, कि विधि राइट हो तो सिद्धि मिलेगी, लेकिन विधि राइट कहां की चाहिए थी? यहां की। अगर हम देखें द्वापर युग से कलयुग के एंड तक पहुंचते पहुंचते एक्चुअली क्या हो गया, हर रिलीजन ने हर रिचुअल ने जो कुछ सिखाया वो यहां करने के लिए सिखाया था, वो सब कुछ यहां करना था, लेकिन करते 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 उसका सिर्फ क्या होता गया, एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता गया, और हम सब कुछ बाहर करते गए। ज्योत जगानी है, फिर ज्योत को संभालना है कि ज्योत बुझ ना जाए। अगर ज्योत बुझ गई तो क्या हो जाएगा? कौन सी ज्योत बुझ गई तो अशुभ हो जाएगा? आत्मा की ज्योत जगानी है कि मैं आत्मा हूं। जब आत्मा की ज्योत जितनी देर जगी रहेगी, मतलब जितनी देर ये स्मृति रहेगी मैं आत्मा हूं, तो हर कर्म शुभ होगा। जैसे ही ज्योत बुझती है, मतलब सारा दिन में हमारी ज्योत बहुत देर बुझती है ना, अभी तक तो हमें याद ही नहीं था कि मैं आत्मा हूं, तो हम कहेंगे ज्योत हमारी क्या थी? बुझी हुई थी। अब हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे उस ज्योत को जलाते हैं। एक बार जब ज्योत को जलाते हैं, फिर भी वो सारा दिन में क्या होती है? जलती है, बुझती है, कम होती है, फिर बढ़ने लग जाती है। तो ये होता है कि जैसे ही वो कम होने लगे, वो ज्योत को क्या कर लो, जाके बचा लो कि वो बुझे नहीं, उसमें घी डाल दो। कौन सा घी डाल दो? कौन सा घी डाल दो? ज्ञान का घी डाल दो। अपने आप को फटाफट से याद दिलाओ, फिर से मैं आत्मा हूं, तो ज्योत क्या हो जाएगी? बुझ गई। अब जो इस ज्योत के साथ करना था हम क्या करने लग गए, वो ज्योत ना बुझ जाए। बुझ जाए कोई बात नहीं, प्यार से जाओ फिर से जला दो। सोचना चाहिए क्या हम कर रहे हैं, क्या हम फियर क्रिएट कर रहे हैं कि ज्योत बुझ जाएगी तो अशुभ हो जाएगा। जब कार्य शुभ है उसमें कोई भी गलती हो जाए, अशुभ कुछ हो ही नहीं सकता। जहां वो थॉट होगा तो पहले से ही मन अशुभ है, क्योंकि फियर है। जब भगवान से डरते हैं ना, तो भगवान से प्यार नहीं कर पाएंगे। ईदर वी कैन बी गॉड फियरिंग और वी कैन बी गॉड लविंग, दोनों नहीं हो सकता। जिससे हम डरते हैं तो उसके नजदीक जाने में भी भगवान से भी डरते हैं, अनर्थ न कर दे, अशुभ न कर दे, गलत न कर दे। कुछ भी गलत नहीं हो सकता जब कार्य शुभ है। तो जो करना था अंदर करना था। तो मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कि जो कुछ हम बाहर कर रहे थे, अब बाहर के साथ साथ हमें उसको कहाँ करना है, अंदर भी करना है। पूजा जब हम करते हैं, पाठ हम पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, भागवत गीता हम पढ़ते हैं, तो मन ने पढ़ना है, मन ने पढ़ना है। ऐसा नहीं मैंने पढ़ लिया चार पेज हो गया चलो, तो फिर मुख ने पढ़ा। जब मुख पढ़ता है और रोज सेम चीज पढ़ता है तो थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। देखो आप रोज घर से हॉस्पिटल जाते हैं, जब पहली बार गए होंगे तो कितने ध्यान से गाड़ी चलाई होगी, यहां लेफ्ट टर्न जाना है, फिर राइट टर्न जाना है, फिर उधर साइड पे सब देखते हुए साइन बोर्ड सब कुछ। एक महीने बाद कैसे गाड़ी चलाते हैं घर से हॉस्पिटल जाने के लिए, कैसे चलाते हैं, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, नहीं कुछ और सोचते हुए, कंप्लीटली कुछ और सोचते हुए हम 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दिखता है बोर्ड, हम कहते हैं अच्छा पहुंच गए। आजकल तो हम मोबाइल पे बात करते करते भी पहुंच जाते हैं, हेडफोन लगाया बात की, टाइम यूज हो गया हमारा। तो क्या हुआ, 15 मिनट हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन क्योंकि हम रोज गए हैं तो वो चीज क्या हो गई है, फिट हो गई हमारी प्रोग्रामिंग में। अब हमें मन की जरूरत नहीं है वो काम करने के लिए, तो हमारा मन उतनी देर में क्या कर लेता है, कुछ और कर लेता है। सिमिलरली जब हम रोज वही चीज पढ़ते हैं और उसमें हमारी अपनी कोई बात, अपनी कोई फीलिंग नहीं हम ऐड करते, सिर्फ मैकेनिकली रोज वो चीज पढ़ते हैं, तो थोड़े दिन तो नवीन लगेगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो चीज क्या हो जाएगी, थोड़े दिन के बाद वो चीज क्या हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगी। तो अगर हम 15 मिनट पढ़ते हैं उतनी देर में मन दूसरे काम कर लेता है, कर लेता है या नहीं कर लेता, और हमें फिर बाद में पता चलता है अच्छा हम पहुंच गए लास्ट पेज तक, हो गया चलो। दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज वी आर डूइंग इट मैकेनिकली एवरी डे। किसी से रिश्ता जुड़ना कैसे जुड़ेगा, किसी से रिश्ता जुड़ना कैसे जुड़ेगा, हम बात करेंगे उनसे तो किसकी बात करेंगे, अपनी बात। अभी क्या हम कर रहे हैं, किसी ने, कोई बहुत पवित्र आत्मा ने अपने जो भाव थे परमात्मा के प्रति वो लिखे, बहुत ऊंचे, बहुत श्रेष्ठ, लेकिन उस आत्मा के भाव थे, वो उस आत्मा के भाव थे। हम रोज सिर्फ उस आत्मा के भाव पढ़ रहे हैं, अपना पर्सनल कोई बात नहीं कर रहे। रिश्ता जुड़ेगा, रिश्ता जुड़ेगा। अगर एक बच्चा अपने पेरेंट से जो बात करता है और वो उसकी हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसका लिखने का स्किल बहुत अच्छा है, वो अपने पेरेंट से जो बात करता है वो लिख देता है एक पेज पे, आपका बच्चा रोज घर आता है और आपके सामने खड़े होकर वही पेज पढ़ के सुना देता है आपको, और वो इतना अच्छा पेज है, उसमें एक एक वर्ड मोती की तरह है, लेकिन आपका बच्चा रोज आपके सामने खड़ा होता, वो पेज पढ़ता, रिश्ता जुड़ेगा। रिश्ता कब जुड़ेगा, रिश्ता कब जुड़ेगा, जब बच्चा अपनी बात करेगा, चाहे वो तोतली भाषा है, चाहे वो टूटी फूटी भाषा है, कोई भाषा भी नहीं है अभी तक, तो वो तो अपनी, छोटा बच्चा कौन सी भाषा में बात करता है, छोटा बच्चा कैसी भाषा में बात करता है, तो भी आप देखो एक पेरेंट और बच्चा घंटों एंजॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, ना बच्चे को समझ में आ रहा है पेरेंट क्या बोल रहा है, ना पेरेंट को समझ में आ रहा है बच्चा क्या बोल रहा है, और आप देखो वो सीन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सीन टू सी, होता है या नहीं होता छोटे बच्चे के साथ, कौन किससे बात कर रहा है, शब्द तो किसी को किसी के समझ में नहीं आ रहे, लेकिन किसको क्या समझ में आ रहा है? फीलिंग, वाइब्रेशन. देयर इज सो मच लव बीइंग एक्सचेंज्ड बिटवीन दैट पेरेंट एंड दैट चाइल्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स. लेकिन वो उनका पर्सनल बॉन्ड है. यही रिलेशनशिप हमें उसके साथ डेवलप करना है. वर्ड्स की एक्यूरेसी, विधि की एक्यूरेसी. एक बहन मुझे मिली, कहती मंत्र बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं रोज सीडी चलाती हूँ और वो मंत्र करती हूँ. मैं बोला खुद क्यों नहीं बोलते अगर इतने अच्छे लगते हैं? कहती गलत बोल दिया तो. मैंने तो बात ही नहीं की, किसी और की बात सुना दी उसको. रिलेशनशिप नहीं है. अब हम परमात्मा से क्या क्या बातें कर सकते हैं? हम परमात्मा से क्या क्या बातें कर सकते हैं? आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूं. और बताओ. और बताओ क्या बातें कर सकते हैं? क्या बातें कर सकते हैं परमात्मा से? सारी बातें शेयर कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? क्या क्या बात कर सकते हैं? थैंक्स भी दे सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? अपनी प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? हाँ जी, कुछ मांग भी सकते हैं. क्या मांगेंगे बताओ? फिर भी बताओ क्या मांगोगे? हाँ, परमात्मा से क्या मांगना है वो ध्यान से मांगना, क्योंकि उससे वो ही मांगना जो उसके पास है. उसके पास सब कुछ नहीं है. आप उससे गाड़ी मांगोगे वो नहीं दे सकता. नहीं, क्यों नहीं दे सकता? उसके पास गाड़ी नहीं है. आप उसको ये बोल सकते हो कि मुझे इतनी ताकत दो, मैं इतना बढ़िया काम करूं कि 6 महीने में मैं इतना कमाऊं कि मैं गाड़ी खरीद लूं. दैट इज ओके. लेकिन परमात्मा गाड़ी दे दो? नो. वी हैव टू बी वेरी क्लियर. उसकी क्या पावर है, उसकी क्या पावर नहीं है. परमात्मा मेरी वाइफ को ठीक कर दो, रोज बहुत तंग करती है, विल नॉट हैपन. परमात्मा मुझे वो ताकत दे दो कि मैं उसके साथ वो संस्कार के साथ एडजस्ट करूं और हमारे घर में शांति हो. विल हैपन, विल हैपन. तो किसके पास क्या बात करनी है? आपके पास कोई पेशेंट आए और कहे 1 किलो चावल दे दो तो थोड़ी ठीक लगता है ना? तो किससे क्या करना है कनेक्ट, और किससे क्या लेना है, क्या देना है, क्या बात करनी है, वो भी तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए थी. क्योंकि बचपन से, बट उसमें भी भावना है, बचपन से हम कहते हैं परमात्मा प्लीज मेरा एग्जाम ठीक कर दो, प्लीज मेरा एग्जाम ठीक कर देना. अगर आपने मुझे आज पास करा दिया ना, तो डील भी करते थे. हाँ, तो भगवान से बिजनेस नहीं करना. वो बिना प्रसाद के भी, बिना प्रसाद के भी आपके बच्चे को आपके साथ डील नहीं करनी पड़ती. कभी करनी पड़ती है? आप प्लीज मेरा ये काम कर दो तो मैं आपको ये खिलाऊंगा, तब आप उसका काम करते हैं क्या? नहीं. उतना ही प्यारा रिश्ता बनाना है उसके साथ जितना हमारा हमारे बच्चे के साथ और हमारा हमारे पेरेंट के साथ है. वो ही रिश्ता है ये, पेरेंट चाइल्ड. पिता कहते हैं ना उसको, परम पिता परमात्मा, तुम मात पिता हो. तो मात पिता बच्चे वाला, हर बात करनी, लड़ना भी उससे, हक भी उससे, हेल्प भी उससे, हर बात. अगर हर बात ऐसी करेंगे तो मन कहीं और भटकेगा फिर. अच्छा, हम तो सारी बात कर लेंगे, वो जवाब देगा या नहीं देगा? नहीं तो इतना बोरिंग हो जाएगा, 1% टॉकिंग. फिर क्या होगा? अब हमने प्रॉब्लम बताई तो सोल्यूशन आएगा क्या? सोल्यूशन आएगा? श्योर? कैसे आएगा? जैसे जैसे फिल्म में दिखाते हैं कि एक जोर से लाइटिंग होगी, फिर एक आवाज आएगी और फिर आपको आकाशवाणी होगी, ऐसे वाला तो आएगा नहीं. कैसे आएगा आंसर? मेडिटेशन. हाँ, थॉट आएगा. मेडिटेशन मींस, हम लोग सब सारा दिन में योग करते हैं. क्या करते हैं? हम दूसरी आत्मा को याद करते हैं. कितनी बार हम अनुभव करते हैं कि जब हम किसी आत्मा को याद करते हैं, वो आत्मा भी हमें याद कर देती है? होता है ऐसा? हाँ, हमारे मन में कोई बात आई, बड़ी स्ट्रांग थॉट थी कि मुझे इनसे ये पूछना है. अभी मैंने फोन उठाया और वहां से उनकी घंटी बजी और वो खुद ही बोलने लग गए. होता है? या हमने किसी को याद किया, हमने कहा आज शाम को मैं घर जाके उसको जरूर फोन करूंगा, उससे पहले उनका ही फोन आ गया. ऐसा होता है? व्हाट इज दिस कॉल्ड?
telepathy. So what is telepathy? Telepathy means communication at the level of thought. अभी हम करते हैं communication at the level of word and action. लेकिन highest level of communication क्या है? Communication at the level of thought. हमने thought भेजी, वहां से thought आई. जब आत्मा और आत्मा का ऐसे telepathy हो सकता है, और हम सबने किया है experience. जैसे कितने पेरेंट्स कहते हैं, मुझे पता है आज मेरे बच्चे के साथ कुछ ठीक नहीं है. होता है या नहीं होता? इसकी तबीयत ठीक नहीं है. बच्चे को पूछो, कहते हैं ठीक है, नहीं मुझे पता है कि कुछ ठीक नहीं है. ये क्या है? अभी उसने कुछ बोला नहीं, बताया नहीं. टेलीपैथी, जब आत्मा आत्मा की टेलीपैथी हो सकती है, तो आत्मा और उस परमात्मा की भी टेलीपैथी हो सकती है. क्या हुआ? Just another soul है वो. He's just another soul. The only difference is हम सब आत्माएं शरीर में हैं, and वो शरीर नहीं लेता है, वो निराकार है, परम धाम में है. And क्योंकि वो शरीर नहीं लेता है, तो उसके साथ टेलीपैथी करना और भी इजी है. Suppose मैं आपको याद करूं, हर बार मेरी थॉट आप तक नहीं पहुंचती है. क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि आपका माइंड अगर क्लटर्ड होगा अपनी बातों से, तो फिर वो सिग्नल नहीं कैच करेगा. जब आपका माइंड भी साइलेंट होगा, या आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी भी मेरे साथ ट्यून्ड होगी, तो मैच हो जाएगा. फिर रोज टेलीपैथी नहीं होती है, कभी कभी टेलीपैथी होती है, इट्स वेरी रेयर. लेकिन परमात्मा के साथ टेलीपैथी करना इजियर है, क्योंकि वो आत्मा शरीर नहीं लेती है, और वो आत्मा कोई स्ट्रेस, कोई एंगर, कोई इरिटेशन कुछ नहीं क्रिएट करती है. तो वो आत्मा हमेशा कैसी है? साइलेंट, हमेशा साइलेंट. सिर्फ हमें अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है. उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ कांस्टेंट है. जैसे सन, सूर्य है, वो कांस्टेंट है. अब हमारी चॉइस है कि खिड़की खोलनी है या खिड़की बंद करनी है. हम खिड़की बंद भी कर लें तो वो गायब नहीं हो जाता, उसकी पावर तो हमारे तक रेडिएट हो ही रही है. तो मेडिटेशन मीन्स कि जब आप रोज जो पूजा पाठ करते हैं, वो सब करें, सब करें जो रोज करते आए हैं, लेकिन वो पूरा होने के बाद 5 मिनट अपनी भी बात करें. वो कर सकते हैं? 5 मिनट अपनी भी बात करें, और फिर सिर्फ उस टाइम मॉर्निंग में नहीं करें, दिन में. अभी यहां से यहां जाना है, आज ये मीटिंग है, इस मीटिंग के लिए मुझे बताना मेरे लिए क्या राइट है, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम तो करते जाते हैं. तो ये सारी बातें करते रहते हैं, तो नॉर्मली फॉर रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? फॉर रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बहुत प्यारा हो जाता है. फॉर इट्स सो सिंपल. जैसे हमने कल देखा कि निराकार है, परम धाम में रहने वाला है. इसीलिए आप देखो, जब भी परमात्मा की याद आती है तो कहते ऊपर वाला, ऊपर वाला. भले मंदिर घर में नीचे है, लेकिन याद करेंगे तो क्या कहेंगे? ऊपर वाला. जब खुद भी परेशान होते हैं तो कहते बस अभी मुक्ति चाहिए, अभी मुझे मुक्ति चाहिए. मतलब कहां जाना है मुझे? घर जाना है. घर क्या है? इस चांद सितारों की दुनिया से पार एक स्थान है, जो आत्माओं का रहने का स्थान है और परमात्मा का भी रहने का स्थान है, परम धाम, मुक्ति धाम. उस परम धाम में वो परमात्मा रहता है, निराकार पॉइंट ऑफ लाइट. और इसीलिए हर धर्म स्थापक ने कहा उंगली ऊपर, उसकी तरफ इशारा कर रहे थे. परमात्मा जो भी सृष्टि पर आकर ये सारा ज्ञान हमें अब देते हैं, तो परमात्मा का खुद का बताया हुआ नाम, तो परमात्मा कहते मेरा नाम है शिव. शिव अगेन कोई रिलीजन से नहीं जुड़ा है. शिव का मीनिंग है पॉइंट, शिव का मीनिंग है शांति. आप देखो कुछ भी कभी कभी लिखते हैं ना लाइन, तो उसके एंड में क्या लिखते हैं? शिव 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 डॉट डॉट डॉट. शिव का मीनिंग है कल्याणकारी. और क्योंकि वो हमारा पिता है, पिता है ना, तो अपने पिता को क्या बोलते हैं? हम कैसे संबोधित करते हैं? आप क्या बोलते हैं अपने फादर को? पापा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, डैड बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, राइट? है ना, आपका बेटा भी आपको ऐसा ही बोलते हैं, आपके बच्चे आपको डॉक्टर तो नहीं बोलते, सारी दुनिया आपको डॉक्टर बोलती है, लेकिन आपके बच्चे आपको डॉक्टर नहीं बोलते हैं, डॉक्टर सो एंड सो नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं, पापा बोलते हैं। तो सारी दुनिया भले उसको भगवान बोलती है, ईश्वर बोलती है, गॉड बोलती है, वो उसका टाइटल है, लेकिन भगवान ईश्वर बोलने से वो कैसा साउंड होता है, थोड़ा सा बहुत दूर, बड़ा डिस्टेंट है कोई। तो हम उसको प्यार से बाबा बोलते हैं। बाबा मीन्स माय फादर शिव बाबा। जब भी बाबा शब्द कहीं भी आप सुनते हैं या लिखा हुआ देखते हैं, इट इज फॉर निराकार परमात्मा शिव, नॉट द ह्यूमन मीडियम। ये हम बाद में देखेंगे इनका रोल। बाबा इज फॉर गॉड, गॉड निराकार, दैट पॉइंट ऑफ लाइट। इसीलिए आप हर जगह देखेंगे बाबा का कमरा, शिव बाबा का भंडारा, शिव बाबा का भोलेनाथ का भंडारा, शिव बाबा निराकार परमात्मा। तो उस निराकार परमात्मा से हम अपनी हर बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने से पहले हमें खुद आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, जो हम कल से हर सेशन से पहले कर रहे हैं, क्योंकि शरीर का उससे कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, आत्मा का उससे कनेक्शन जुड़ेगा। मैं डॉक्टर सो एंड सो बन के बैठूंगा तो परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ सकता, तो कौन याद आएंगे, पेशेंट याद आएंगे। मैं आत्मा बन के, मतलब आत्मा कॉन्शियसनेस में बैठूंगा तो आत्मा को परमात्मा याद आएगा। जब मेडिटेशन हम करते हैं तो आत्मा की तीनों फैकल्टीज काम करती हैं। कल हमने देखा तीन फैकल्टी, मन, बुद्धि, संस्कार। मन थॉट क्रिएट करेगा, मैं अभी आपको थॉट देती हूं एक। बुद्धि उसको विजुअलाइज करेगी, विजुअलाइज करेगी मीन्स जो थॉट क्रिएट किया उसका चित्र निर्माण हो जाएगा, पिक्चर शुड कम इन फ्रंट ऑफ यू। हॉस्पिटल आ गया, आ गया पिक्चर, पिक्चर आ गया। कैबिन, डेस्क, स्टाफ, इजी, इजी। जब हम ऐसे करते हैं कि मन थॉट क्रिएट करती है, बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है, क्योंकि ये दोनों फैकल्टी सारा दिन काम करती हैं इकट्ठे, इन दोनों को इकट्ठे चलाना इज कॉन्सेंट्रेशन। इवन जब बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको ये सिखाना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज करते रहो, नहीं तो वो कहते हैं हमारे से कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। क्योंकि अगर हम सिर्फ थॉट क्रिएट करें हॉस्पिटल और उसका पिक्चर नहीं लाएं, तो उतनी देर में बुद्धि के सामने कोई और पिक्चर आ जाएगा। सपोज मैंने थॉट क्रिएट किया हॉस्पिटल और उसको विजुअलाइज नहीं किया, तो बुद्धि के सामने सपोज घर का पिक्चर आ गया, तो मन फिर घर के बारे में सोचने लग जाएगा। यू सीइंग व्हाट हैपेंस, द माइंड एंड द इंटेलेक्ट शुड बी फोकस्ड ऑन द सेम थिंग। अगर माइंड ने कहा थॉट, बुद्धि ने पिक्चर लाया घर, माइंड ने कहा हॉस्पिटल, बुद्धि ने पिक्चर लाया घर, तो मन घर के बारे में सोचना शुरू कर देगा और फिर हम कहेंगे मैं हॉस्पिटल को याद करने बैठा था, याद घर की आ गई। जैसे स्पीकर यहां खड़ा है, प्रोजेक्टर यहां चल रहा है, तो स्पीकर जो बोलता है वही स्लाइड प्रोजेक्टर पे आनी चाहिए। यस, सपोज यहां जो खड़े हैं डॉक्टर, उन्होंने बोला कुछ और लाइन और प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे स्लाइड आ गई कुछ और, तो क्या हो जाता है इमीडिएटली सर? फिर जो स्पीकर है वो भी प्रोजेक्टर की स्लाइड के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। हुआ या नहीं हुआ? तो होगा क्या, वो बोलना चाहते थे कुछ और, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ और आ गया, उनको कुछ और बोलना पड़ा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो बोल रहे हैं और प्रोजेक्टर पे जो आ रहा है वो सेम होना चाहिए। सेम इज द माइंड एंड द इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट इज द प्रोजेक्टर विच विल विजुअलाइज। तो माइंड कहे हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल की पिक्चर लेकर आना सामने, जब तक पिक्चर नहीं आए आगे नहीं बढ़ना। फिर तीसरी फैकल्टी है संस्कार, मीनिंग माइंड ने थॉट क्रिएट किया हॉस्पिटल, बुद्धि ने पिक्चर लाया हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल में लास्ट आपका क्या अनुभव था, अगर सपोज आज कोई सर्जरी गलत हुई थी और आपका अनुभव लास्ट पैनिक एंजाइटी या फियर का था, तो जैसे ही हॉस्पिटल आया याद, अब फीलिंग कौन सी आ जाएगी? वही पैनिक और फियर की आ जाएगी। सपोज आपको याद आया बच्चा, फोटो आई चित्र बच्चे की, तो बच्चे के साथ जैसा रिश्ता है वो फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। जब ये तीन चीजें साथ साथ चल रही हैं, ये है मेडिटेशन, मन बुद्धि संस्कार। मन ने थॉट क्रिएट किया, बुद्धि ने विजुअलाइज किया, हमने उसको फील किया, संस्कार बनता गया। ये तीन फैकल्टीज को हम मेडिटेशन में भी यूज करते हैं। करें स्टार्ट, रेडी सिट अप। एक छोटी सी चीज मेडिटेशन करते टाइम जो हम यहां प्रैक्टिस करते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं, आंखें बंद ना करें। हम में से मेजोरिटी स्लीप डिप्राइव्ड है। नो इट्स ट्रू, अभी इट्स ट्रू, इट इज ट्रू। हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं क्योंकि हर रोज भी शरीर सोता है हमारा, मन नहीं सोता है ज्यादा। इसीलिए जब आप सुबह उठेंगे तो आपका मन करेगा थोड़ा सा और सो जाएं, क्योंकि दिन में जो मन बहुत चलता है और रात को ऐसे जाके लेट जाता है, और क्योंकि बहुत थके हुए हैं तो सो जाते हैं, वो मन उतनी ही स्पीड पे रात को भी चलता रहता है। और अगर हमने कोई सब्सटेंस यूज किया है सोने के लिए, तो फिर तो मन सोता ही नहीं है। इट डज नॉट गो इन टू द डेल्टा स्टेज, दैट इज अनदर टॉपिक, बट ए मेडिकली प्रूफ्ड। एल्कोहल, स्लीपिंग पिल, कुछ भी ले लें, माइंड डज नॉट गो इन टू द डीप, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्लीप, द डेल्टा स्टेज। माइंड चार स्टेजेस से गुजरता है, अल्फा, पहले बीटा स्टेज है, अभी हम बीटा स्टेज में, अवेक स्टेज में, फिर स्लो डाउन हुआ अल्फा, फिर और स्लो डाउन हुआ थीटा, फिर एकदम डीप स्लीप जो होती है वो है डेल्टा, जो हर दो ढाई घंटे में हम 20 मिनट के लिए वो स्लीप में होते हैं, और वो स्लीप में ही चार्जिंग होती है। वो स्लीप होती है कई बार कि आपके घर की घंटी बजे, आपका फोन बजा और आपको पता नहीं चला, होता है ना ऐसे कई बार। हम कहते हैं हमेशा तो मैं उठता हूं, फोन बजे, आज क्या हुआ? वो बाय चांस वो फोन उस 20 मिनट के अंदर बजा था जब आप उस डेल्टा स्टेज में थे। अल्कोहल, स्लीपिंग पिल, ऐसे सब्सटेंसेस जो रोज लेते हैं, सोचते हैं सोने के लिए ले रहे हैं, वो डेल्टा स्टेज में माइंड नहीं जाता है, और इसीलिए सुबह उठकर वो फ्रेश नहीं फील करते, फ्रेश नहीं फील करते, क्योंकि चार्जिंग जो माइंड की डेल्टा स्टेज में होनी चाहिए थी वो उनकी नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ क्या किया, अपने मन की कॉन्शियस लेयर ऑफ थॉट्स को सब्सटेंस यूज करके साइलेंट कर दिया, और वो लगता है कि ठीक है ना, सब कुछ जो चल रहा था सोचना तो बंद हुआ ना, और सो गए, सो गए। इससे अच्छा अगर हम सोने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, मतलब हम वापस पूरे दिन का सब किए हुए चीज को क्लीन करते हैं, साइलेंट करते हैं, वापस वो स्थिति में आते हैं, तो मन साइलेंट होके अगर सोता है तो डेल्टा स्टेज में जल्दी जाता है। एक टाइम पर सिर्फ 2 बार मन डेल्टा स्टेज में जाता है इन वन स्लीपिंग। जैसे आप 6-7 घंटे भी सोए तो 2 बार 2-2.5 घंटे का साइकिल बनेगा। जैसे अल्फा से हम डेल्टा तक पहुंचेंगे, 20 मिनट डेल्टा में रहेंगे, वापस थीटा अल्फा तक पहुंचेंगे, फिर वापस वो हम रहेंगे, तो 4-5 घंटे मैक्सिमम के अंदर हमारा माइंड 2 बार डेल्टा स्टेज में चला जाता है। उसके बाद माइंड डेल्टा स्टेज में नहीं जाता है, और इसीलिए अर्ली मॉर्निंग स्लीप में सपने ज्यादा आते हैं। वी ऑल फील कि अर्ली मॉर्निंग, इसीलिए उठते ही सपने याद होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम ही आए हुए होते हैं, क्योंकि 5 घंटे के बाद वी आर नॉट गोइंग इन टू द डेल्टा स्टेज। नाउ आफ्टर 5 आवर्स वी स्टार्ट कंज्यूमिंग द एनर्जी विच वी चार्ज्ड, बट द बॉडी प्रोबेबली नीड्स मोर स्लीप, सो वी स्लीप फॉर मोर देन 5 आवर्स, माइंड नीड्स ओनली 5 आवर्स। सो नेवर टेल योर सेल्फ कि मुझे नींद पूरी नहीं मिलती है, ये विक्टिम फीलिंग होती है, मैं क्या करूं मुझे नींद नहीं मिलती है। नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर, क्वालिटी ड्यूरिंग दैट नंबर ऑफ आवर्स मैटर्स। और स्पेशली जो ये साइकोलॉजी है कि आज संडे है तो ज्यादा सोएंगे, एंड फिर देखो ज्यादा सोने के बाद कैसा फील होता है, उठने के बाद कैसा लगता है, फिर चाय पे चाय पे चाय फ्रेश होने के लिए, क्योंकि ज्यादा सोना ओनली मीन्स दैट वी आर डिस्चार्जिंग एनर्जी विच वी चार्ज्ड. तो देर इज नो कॉन्सेप्ट के ज्यादा सोने से ज्यादा चार्जिंग होने वाली है. मोर इम्पोर्टेंट इज क्वालिटी ऑफ स्लीप, नॉट क्वांटिटी ऑफ स्लीप. तो मेडिटेशन 5 मिनट करके रात को अगर सोते हैं तो हमारी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है. हाँ, टॉपिक से शिफ्ट हो गए. बिकॉज वी आर स्लीप डिप्राइव्ड, तो हम जैसे ही शांति में बैठते हैं, आंख बंद होती है, हमारे पास सेंटर पर इतने भाई बहने आते हैं जिनको नींद की प्रॉब्लम है. उनको नींद नहीं आती है घर पे, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन में रेड लाइट ऑन हुई, प्यारा सा म्यूजिक चला बैकग्राउंड के अंदर और मेडिटेशन कमेंट्री चली, थॉट्स जैसे ही स्लो डाउन हुई, क्योंकि नींद आने के लिए क्या करना है, सिर्फ थॉट स्लो डाउन होनी है ना. किसी का मन परेशान होता है, उसकी थॉट स्लो डाउन नहीं होती, चिंता चलती है. तो आंख बंद होती है, नींद आती है, 10 मिनट बाद उठते हैं, कहते इतनी शांति थी. लेकिन हमें वो वाली शांति रात को चाहिए. मेडिटेशन में हमें कुछ और करना है, तो हम आंखें बंद नहीं करते. और उसके पीछे एक और रीजन भी है, हमें मेडिटेशन सिर्फ बैठकर नहीं करना है, हमें तो चलते फिरते काम करते, सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद, सर्जरी के बीच में मेडिटेशन करना है. तो आंखें बंद करके थोड़ी करेंगे उस टाइम पर. तो प्रैक्टिस ही सारा दिन कैसे रहती है, इट्स ओनली टू डू विद द माइंड, इट इज नथिंग टू डू विद द आईज, इट इज नथिंग टू डू विद द आईज. औरों को याद करते हैं तो आंखें बंद थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना. एंड अनदर थिंग इज, जो थॉट आप यहां क्रिएट करेंगे, आईज आर द मोस्ट पावरफुल मीडियम टू रेडिएट इट. आप देखो, गुस्सा देखना हो तो आंखों में देखो, प्यार देखना हो तो आंखों में देखो. तो आंखें डायरेक्टली रिफ्लेक्शन है हमारी वाइब्रेशन की. तो जब हम मेडिटेट करते हैं और आंखें खुली होती हैं, तो बहुत पावर और प्योरिटी और पीस की वाइब्रेशन हमारी आंखों से सब तक पहुंचती है. तो ये भी एक प्रैक्टिस कि आंखें खुली, पूरी खुली नहीं रख सकते तो हाफ ओपन, एटली ऐसे बंद नहीं करते ना पूरी, नहीं तो विद इन लेस देन 2 मिनट्स यू विल स्लीप. आप कोई सोया कल से यहां पे मेडिटेशन के दौरान, किसी को नींद आई थी? आई थी ना. तो सिट इरेक्ट, कंफर्टेबल, घर पर भी करने के टाइम कंफर्टेबल. आज के समय में क्योंकि बैक एक है, ये है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें कोई डिफिकल्ट पोस्चर में बैठना है. अगर शरीर कंफर्टेबल नहीं होगा तो मेडिटेशन नहीं हो सकता. पैर दर्द हो रहा, पीठ दर्द हो रहा, तो मन कहीं और कहां जाएगा, मन किस में जाएगा. तो कंफर्टेबल बट नॉट केयरलेस कि नींद आ जाए. कई लोग फिर घर जाने के बाद कहते मैं 4 बजे उठा था पर लेटे लेटे मैंने मेडिटेशन कर लिया, तो वो लेटे लेटे भी नहीं कर सकते क्योंकि लेटे लेटे नहीं होगा. ओके, नाउ सिट बैक, सीधा. जिन्होंने, बाकी सबने कब लिया था, फर्स्ट डे पे? ओके. जो सभी डॉक्टर्स प्रोग्राम में आए हैं, जिनको परमात्मा के घर से सौगात फर्स्ट डे पे मिली थी शायद, पर कुछ को नहीं मिली जो बाद में आए थे, तो इस सेशन के बाद व्हाइट लाइट रहने दीजिए. इस सेशन के बाद वो यहां पे बैठेंगे और गिफ्ट लेकर जाएंगे. I'm purposely not telling them to switch to red light, क्योंकि घर पे red light नहीं होगी, hospital में भी नहीं होगी, तब जाकर ये नहीं कहना कि red light नहीं है इसलिए योग नहीं लगता है. We will do it in exactly the vibration and the environment जो हमें जाकर घर पे और अपने hospital में हमारी car में मिलने वाला है. Okay, sit back. अब कोई नहीं उठेगा बीच में 5-10 मिनट. हम पहले छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं, which is meditation, but not that meditation. I will give you few thoughts. आप बस वो simple उसके साथ चलना, कि वो thought के साथ visualize करना, visualize के साथ उसको feel करने की कोशिश करना. कोई strain नहीं, कोई pressure नहीं, एकदम easy. एकदम easy. बीच में कोई thought आए, परफेक्टली ओके आए उसको बोलो बाद में बात करेंगे, अभी हम ये कर रहे हैं, है ना, जैसे किसी और को बोलते हैं। बहन आप साइलेंट रहेंगे पीछे, एवरीबडी इज ऑलवेज सो बिजी इन व्हाट दे डू, दे डोंट लिसन टू व्हाट द अदर पीपल वांट। बहन ओके थैंक यू। अच्छा सिट बैक कंफर्टेबल, आईज हाफ ओपन। अगर किसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी लगता है तो ऊपर सामने एक पॉइंट ऑफ लाइट है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ओनली इफ नीडेड, नॉट नेसेसरी एट ऑल। हम यहां से उठकर मन से और बुद्धि से अपने घर की तरफ चलते हैं। देखें अपने आप को, घर के रास्ते पर पहुंच चुके हैं, घर के बाहर जो गली है, लेन है, क्या क्या है उस सड़क पर, सब कुछ को ध्यान से देखें। धीरे धीरे अपने घर के गेट पर पहुंचे, कौन से रंग का है, गेट को खोलते हुए अंदर मकान के मेन डोर पर दरवाजे पे नाम किसका लिखा है, देखें उस नेम प्लेट को भी, दरवाजा खोले, घर में एंटर। हर चीज को देखें घर पे, सोफा कहां पड़ा, टीवी कहां पड़ा है, पूरे घर को देखें, सब ठीक ठाक। घर में लोग कौन कौन हैं? उनके पास जाकर बैठे, उनको बताएं यहां क्या क्या अनुभव किया कल पूरे दिन में, किचन में चले, फ्रिज खोले, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फल हैं फ्रेश, एक ऑरेंज भी पड़ा है वहां, निकालते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले फ्रूट अच्छा है, छिले, खाना शुरू करें। ओके ओम शांति। घर होकर आए, होकर आए, कौन कौन घर गया था? ब्रदर आप बैठेंगे, फोटो नहीं खींचेंगे अभी बीच में, थैंक यू। कौन कौन घर जा पाया? ओके दिखा सब कुछ ठीक से, लोग दिखे, फैमिली दिखा, हाउ मेनी कुड शेयर विद देम समथिंग, व्हाट एवर यू वांटेड टू शेयर, बात कर सकते थे। ओके संतरा किसने खाया? किसी के मुंह में सलाइवा क्रिएट हुआ? दैट्स इट, परफेक्ट मेडिटेशन, दिस इज परफेक्ट मेडिटेशन। मन बुद्धि संस्कार तीनों फैकल्टी इकट्ठे इकट्ठे चल रहे हैं, बीच में कोई और थॉट आने की मार्जिन है ही नहीं। 10 मिनट्स हो गया, आई सॉ बाय द क्लॉक, सो दैट यू शुड नो योर ओन पोटेंशियल। 10 मिनट्स बीत गया, Right? Now again, sit back. Brother, bhai, unko aram se baithne ko, disturb nahi karna sabko, baat mein khichne. Okay? Ab hum prayer karenge. Ab kaun se ghar jayenge? Ab wo wale ghar jayenge. Ab kis se milenge? Ab baba se milenge. अब परमात्मा से मिलेंगे और उससे बातें करेंगे. अब संतरा नहीं खाएंगे. अब क्या लेंगे? अब उससे पावर लेंगे, पीस लेंगे, प्योरिटी लेंगे, क्योंकि वो उसका पावर हाउस है, वो उसकी वाइब्रेशन है पूरी. तो जब हम उसके पास ही जाकर बैठ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी वाइब्रेशन हमारे अंदर भर दी जाएगी. और जाएगा कौन? आत्मा जाएगी. शरीर नहीं जा सकता है ना? तो जब हम कहते हैं आत्मा, तो आत्मा को फिजिकल कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, ताकि विजुअलाइज कर सकते हैं. पॉइंट ऑफ लाइट, एक सितारा, एक स्टार की तरह उड़कर ऊपर जाएगा. परमात्मा भी कैसा? पॉइंट ऑफ लाइट. लेकिन फर्क सिर्फ क्या, वो पॉइंट ऑफ लाइट से जो पावर है बहुत लाइक द सन, रेडिएट, पावरफुल. ठीक है, चलो सिट बैक. भाई सब रिकॉर्डिंग बाद में करेंगे, मेडिटेशन करते हैं, इंजॉय. ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना? एंड हमें रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सिट बैक, कंफर्टेबल. रिलैक्स्ड. पीछे बात नहीं करेंगे. थैंक यू. फोन साइलेंट पे रखेंगे. अब अपने आप को देखें. इस शरीर को चलाने वाली शक्ति पॉइंट ऑफ लाइट हूं, एनर्जी, आत्मा, जिसने ये शरीर धारण किया है. आई एम वेयरिंग दिस कॉस्ट्यूम. धीरे धीरे ट्राई एंड लुक एट योरसेल्फ इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. Tiny point of light. Dheere dheere, koi pressure nahi. More important is to feel it. Center of the forehead. Main atma, yahan par baith kar, sochti ho, decision leti ho, karam karti ho. I am a peaceful being. देखें इस center of the forehead में ये जो चमकता हुआ star है, इसकी beam, इसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं. मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए अपने घर की तरफ चलती हूं. देखें अपने आप को उस स्टार, इस शरीर से ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है, हॉल से बाहर, शहर के ऊपर, ऊपर, ऊपर. देखें उस सितारे को उड़ते हुए ऊपर, चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए. सी एवरीथिंग ऑन द वे, द मून, द स्टार्स, एवरीथिंग. वी आर क्रॉसिंग, गोइंग होम. हमेशा चाहते थे कि मुक्ति धाम जाना है, हम वहां ही चल रहे हैं. धीरे धीरे आकाश से परे, गोल्डन रेड लाइट, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। देखें और फील भी करें, गोल्डन रेड लाइट है और मैं चमकता हुआ सितारा अपने घर आकर पहुंचा हूं। मेरे सामने एक बहुत सुंदर बट बहुत पावरफुल एक और चमकता हुआ सितारा है। धीरे धीरे उसके पास जाएं। परमात्मा, कब से हम उसको ढूंढ रहे थे, क्या कुछ नहीं किया उसको पाने के लिए, उसने हमें अब ढूंढ लिया है। उसके पास जाकर बैठे। माता पिता है वो हमारा, उसका सब कुछ हमारा है, उसकी गुण, उसकी शक्तियां, उसकी पावर मेरी है, मैं उसका बच्चा हूं। बाबा, आपका कितना शुक्रिया, आपने मुझे अपना बना लिया। मन में जो बात है उसको कहते हैं, कोई पास्ट की बात, कोई गिल्ट, कोई ऐसी चीज जो हमें लगता है हमसे गलत हुई थी, कोई और प्रॉब्लम, कुछ भी बात जो मन को भारी करती है, कोई प्रश्न, अपने पिता से बात करें। वो भगवान है लेकिन वो मेरा पिता है, मेरी हर प्रॉब्लम के लिए वो मेरे साथ है। वो शांति का सागर, पवित्रता का सागर, प्यार का सागर है। उसकी वाइब्रेशन, उसकी पावर चारों तरफ फैल रही है। लुक एट इट लाइक अ लेजर बीम, बाबा से निकल वो प्यार, वो पवित्रता मुझ आत्मा के अंदर भरती जा रही है। I am getting healed by God's love. सारे मेरे दर्द, all past wounds, वो सब heal होते जा रहे हैं। धीरे धीरे इस सारी शक्ति को अपने अंदर भरते हुए वापस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए धीरे 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 नीचे हॉल में अपने शरीर में अपने स्थान पर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड being. filled with the purity and love of God. Shiv Baba ki shaktiyan, uska pyar, har pal mere saath hai. अब धीरे धीरे इसी स्थिति में इसी साइलेंस में हम उठेंगे. हम वापस 9:15 पहुंचेंगे. 9:10 पर एग्जैक्ट हम यहां पर होंगे. एकदम साइलेंस में चलते हैं. इस एनर्जी को अपने अंदर संभालना है. साइलेंस हमारी शांति औरों को भी सहयोग देती है. जिन्होंने सौगात गिफ्ट नहीं ली थी वो रुकेंगे यहाँ पे, बाकी सब नाश्ते पे चलेंगे. कोई भी बात नहीं करेगा. बहने कोई भी बात नहीं करेगा. हम एक भी बना बात करते हैं औरों को डिस्टर्ब होता है. बाबा के साथ बातें करते हुए हम नाश्ते पे चलेंगे. नाश्ता भी आज उसके साथ बैठकर करेंगे. कितनी सारी बातें हैं उसके साथ करने के लिए. बातें करते हुए उसके साथ नाश्ता करेंगे. औरों के साथ तो बहुत बातें की, आज उसके साथ बातें करते हैं.